हमारा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनी भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। जन्म मृत्यु बुढ़ापा जो कुछ है उसका नाम जीवन है। जन्म जरा दोनों में जीवन का धागा अनुस्यूत है। हमने कहां पर जन्म लिया इससे कोई अंतर, कहां पर मृत्यु को उपलब्ध हुए इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है कि हमने अपना जीवन किस तरह से जिया। जीवन को जीने के अनेक ढंग हो सकते हैं। एक तो वह हो सकता है कि व्यक्ति जन्म लेने के बाद ही अपने जीवन को सुसंस्कारित कर सकता है, और एक ढंग वो हो सकता है कि संसार की भौतिकताओं में लौकिक विषय सुखों की सामग्रियों के संयोजन में, उनके संकलन में और संवर्धन में अपने जीवन को बिताए। हमारे लिए भी एक मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन एक अवसर है। इतना बड़ा अवसर है जैसे चौराहे पर कोई एक रत्न रखा हो, और जहां से प्रतिक्षण हजारों हजार लोग गुजरते हों, वहां पर एक किसी व्यक्ति के लिए वो रत्न दिख जाए और वो उसे उठा ले। इसी तरह से मनुष्य जीवन है। चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभ जो उपलब्ध हो गया। भगवान के दर्शन जिस व्यक्ति के लिए हो जाते हैं, निश्चित रूप से उसके जीवन में सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाती है, दृष्टि बदल जाती है। भक्ति का और कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ दृष्टि का विनिमय है, दृष्टि का बदलाहट है। जो चेतना अभी तक विषय वासनाओं की तरफ सक्रिय थी, उसको मोड़ करके हम धर्म और कर्तव्य की तरफ ले आते हैं, भक्ति की ओर ले आते हैं। बहुत कम लोगों को ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है जो अपनी आंखों से जिनेंद्र भगवान का दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति जैन दर्शन में आकर के किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माता है, अपने ही कर्मों का भोगता है, और अपने ही सत्कर्मों के माध्यम से एक दिन संसार से पार हो जाता है। दूसरे का सहारा सिर्फ रास्ते के लिए आवश्यक है, वहां पर तो सब अकेले ही हैं, अकेला ही जन्मता है, अकेला ही जीता है, और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, और अकेला ही निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। कर्म को फल भोगते समय व्यक्ति नितांत अकेला ही रहता है। भक्ति के भावों से भर करके एक मेंढक अपने मुख में पुष्प, कमल पुष्प की एक पाखुड़ी दबाए हुए कि हम भी भगवान की पूजा करेंगे, अभिषेक तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कम से कम पूजा के परिणाम कर सकते हैं, त्रियंश हैं इसलिए कुछ अधिक नहीं किया जा सकता है, भावों के माध्यम से ही सब कुछ पा लिया जाता है। और वो भक्ति भाव से उचकता उचकता पहुंचा, लेकर त्रैरणक राजा का जो हाथी था उसके पैर के नीचे आ गया और मर गया। मरने के उपरांत देव गति मिली, क्योंकि सुख परिणाम थे, भाव अच्छे थे, भगवान की पूजा करने के भाव थे, और जाकर के वहां पर जब देव हुआ तो तुरंत ही अवधज्ञान से जान लिया कि हम तो इस फल के कारण यहाँ पर आए हैं, और शरण के से पहले ही समव शरण में वो देव पहुंच गया। उसकी आभा, उसकी ज्योति इतनी अधिक थी उसकी कि श्रेणक भी चौके बिना नहीं रहे, और उनने पूछा कि प्रभु ये कौन सा देव अभी अभी आया है जिसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह है। तो उन्होंने कहा कि ये वह मेंढक है जो आपके हाथी के पैर के नीचे कुचल करके मर गया था, और अपने भक्ति के भावों के कारण आज देवत्व पने को प्राप्त हुआ है। आप लोगों ने चार माह तक वाचना सुनी है, और उसमें एक स्थान पर आता है, स्वापी देवोपी देवा स्वा जायते धर्म किल विसात कापी नाम भवे धन्या संपद धर्माक्षरीण नाम। व्यक्ति धर्म का साथ लेने से, धर्म का संबल प्राप्त करने से देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है, और जो धर्म को छोड़ देता है वो देव नारकी त्रियंच गति में भी पहुंच जाता है, वनस्पति में पहुंच जाता है। जो व्यक्ति धर्म का संबल ले लेता है वो स्वयं अपने आप के लिए सुख के सोपानों तक पहुंचा देता है। हम भी अपने जीवन में अंतिम श्वासों तक धर्म का संबल पाए रहें, सच्चे देवशास्त्र गुरु का हमारे लिए समागम बना रहे, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ हमारे हाथ जरूर रहेगा। और अगर हम धर्म से हटकर अधर्ममय जीवन जीते हैं, जब सौ का हमारे झूठ बोलने से हम बना लेते हैं तो सत्य बोलने से भी हमारे काम बन सकते हैं, लेकिन हमारे लिए झूठ पर विश्वास अधिक है, सत्य पर नहीं है। सत्य पर तो संदेह हो जाता है, लेकिन झूठ पर एकदम प्रगाढ़ विश्वास हो जाता है। दूसरे की निंदा सुनने में तुरंत विश्वास हो जाता है, लेकिन प्रशंसा के बारे में पता नहीं ऐसा हो सकता क्या कि व्यक्ति ने इतना यश अर्जित कर लिया हो। अगर निंदा की बात हो तो बिल्कुल छायक सम्यक दर्शन हो जाता कि बिल्कुल बात 100% सही, हम तो पहले ही कह रहे थे। हमें अपनी मानसिकता बदलनी है इन आयोजनों के माध्यम से कि हमारे भीतर वह क्यों अभी तक उपलब्धि नहीं हो पाई है जो भगवान के लिए हो गई है सहज रूप से। हमारे अज्ञान के कारण, हमारे अविवेक के कारण हम दुखी हो रहे हैं। एक मेला लगा हुआ था संक्रांति के अवसर पर, तो वहां पर चारों तरफ से फट्टियां लगा दी गई थी, और बीचों बीच एक गड्ढा था, और बाहर लोग चिल्ला रहे थे कि 10x54 में खुदा देखो। लोगों ने सोचा कि चलो 54 में अगर खुदा देखने के लिए मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है। पूरे जब टिकट बिक गए तो वहां का जो गेट कीपर था वो अलग हो गया, उसने कहा कि जाओ आप लोग अब खुदा देखो, वहां पर खुदा है। बहुत से लोगों ने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं है, एक गड्ढा मात्र था, तो पूछा कि भाई ये क्या हो रहा। तो उसने कहा कि यही तो हमने कहा था कि 54 में खुदा देखो, खुदा हुआ है कि नहीं खुदा हुआ, सब तरफ खुदा हुआ है। अगर हमारे लिए दिखाई ना पड़े, जब हमारी आंखों में भगवान होते हैं तब वास्तव में अपने भीतर और प्राणी मात्र के भीतर भगवान दिखाई पड़ते हैं, और अगर हमारी दृष्टि में ही भगवत्ता नहीं है, समर्पण के भाव नहीं है, श्रद्धा के भाव नहीं है, तो हमारे लिए भगवत्पना और भगवान की मूर्ति देखते हुए भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। आप घर में लड़भड़ करके जाइए मंदिर तो ऐसा लगेगा जैसे भगवान गुस्से में हो, क्योंकि आप गुस्से में आए हैं। तुलसीदास जी ने कहा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। जैसी हमारी भावना होती है उसका फल, उसका परिणाम हमें वैसा मिल जाता है। हम अपने भावों को संभालने का प्रयत्न करें, प्रत्येक क्षण जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारी प्रगति में बाधक हो जाती हैं। इसलिए सच्चे मन से देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहें, भगवान की पूजा उपासना करें। कोई ये पार्ट टाइम धर्म नहीं है कि कहीं पर और जाके दूसरा काम भी कर लिया जाए, ये तो हर समय प्रति क्षण हमारी श्वासों के साथ जुड़ा हुआ धर्म है, अंतस में जीने की कला है। ये तो सुबह शाम ओढ़ने और पहनने जैसे कपड़ों की तरह नहीं है कि उतार के फिर रख दो फिर दूसरी बार पहन लो, ये तो एक बार धारण किया जाता है तो तब तक जब तक कि भगवत बने की उपलब्धि हमारे लिए ना हो जाए। आप सबके जीवन में भी वो मंगल दिन आए, आप सब भी एक दिन भगवान बने को प्राप्त हो जाएं। इसी भावना के साथ चार पंक्तियां कहकर ये वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं। जिंदगी को मृत्यु का पीना जहर है, वक्त की हर सांस में सोती कहर है, चांद पर दुनिया भले कोई बसा ले पर अंत में इंसान का मरघट ही शहर है। उस शहर में हम पहुंचे उससे पहले ही हम अपने जीवन में धर्म का दीपक जलाएं, खुद प्रकाशित हो जाएं, अंतरात्मा का कलमश हटे, तभी हमारे जीवन की सार्थकता होगी। भगवान महावीर स्वामी की
जय। मुनि वन मुनि पद में निरत हो मुनि अनिविद स्वार, मुनि व्रत का उपदेश दे हमको किया कृता, मात्र भावना मम रही मुनि व्रत पाल अतार, मैं भी मुनि सुव्रत बनू पावन पाए पदा, तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा कर करुणा करो कर से दो वासी। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की। संचालक महोदय के मुंह में घी सककर आप सबकी भावनाएं यदि इस तरह बनी रही तो वो दिन भी दूर नहीं है। लेकिन तालियां बजाने से नहीं, हम जैसा आचरण करने के बाद में सब काम ऐसे सिद्ध होते हैं जब यहां तक पहुंच पाते हैं। हमारे जीवन में ऐसे ये क्षण ये अवसर बहुत कम आया करते हैं कि जब कभी हम अपने लिए अपने स्वरूप को समझने के लिए एक बार सोचें, अपने को पहचानें और पहचान करके उसे प्राप्त करने की यदि कोशिश की जाए तो उसे हम प्राप्त भी कर लेते हैं। सब साधन है, साधनों को साधन की तरह ही देखना चाहिए, साधनों में साध्य निहित नहीं होता, जो साधन के माध्यम से ऊपर उठ जाते हैं वे अपने जीवन में साध्य की सिद्धि कर लेते हैं। हमारे जीवन का भी यही एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि जिस तरह आज हमने उन परम प्रभु परमात्मा की शोभा यात्रा निकाली, हमारे जीवन में भी वो क्षण आए कि एक दिन हम भी उन जैसे बन सके। ऐसा बन पाना इतना सरल नहीं है। हमारे अंदर में तो सांसारिक विषय वासनाएं, भोगों की आकांक्षाएं अभी बहुत जीवित हैं। हम बाहर से भले ही कह देते हैं कि महाराज जी अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत शांति है, लेकिन एक बार अपने हृदय पर हाथ रख करके फिर पूछिए अपने से कि वास्तव में क्या हमें शांति है। यदि है तब फिर यहाँ आने की और कार्यक्रम और आयोजन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने ये आयोजन किए इससे सिद्ध होता है कि अभी शांति नहीं, शांति की प्यास आपके अंदर पैदा हुई है, शांति पाने की एक जिज्ञासा आपके अंदर में आई है। ये आयोजन एक ओर जहां हमें शांति को प्रदान करते हैं तो वहीं हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति में भी कारण कहे गए हैं। बल्कि आचार्य शमंतभद्र आदि महाराज जो यहां पर कह के गए हैं सम्यक दृष्टि के आचरण की बात, जिसने अपने जीवन में वो समीचीन श्रद्धा प्राप्त कर ली है, जिसके अंदर में सम्यक दर्शन की वो एक निर्मल पर्याय श्रद्धा गुण की प्रकट हुई है, उसका जीवन ऐसा परिवर्तित हो जाता है, इतना निसंक हो जाता है, वो निराकांक्ष हो जाता है, संसार की उसी आकांक्षाएं अब और नहीं हुआ करती हैं, उसे कोई और संदेह और शंका नहीं हुआ करती है, उसे किसी तरह की कोई गिलानी नहीं पैदा होती है, किसी तरह की कोई विपरीतताएं नहीं उसके सामने आती हैं, वो अविचल और अपने आप में स्थित होने का प्रयास करता है, कभी अपने धर्म से चलायमान नहीं होता है, और जब कभी भी कोई हमारी दृष्टि में दोष दिखाई दे जाते हैं तब उनके लिए भी वो अपने अंदर छिपा के रखता है कि किसी के दोष ना कहे जाएं, और इसके बाद में सबके प्रति प्रेम और वात्सल्य की धारा उसके फूट पड़ती है। अंतिम जुगुणों से प्राप्त होता है, अंतिम आचरण जो उसे प्राप्त होता है, और आज मुझे देख करके लग रहा है कि आज आपने जो ये कार्यक्रम किया है इससे ये प्रदर्शित हो रहा है कि आप सभी लोग सम्यक दृष्टि हैं। इसलिए लग रहा है कि आपने ये प्रभावना अंग का एक कार्यक्रम यहाँ किया। समन्वत महाराज ने कहा है, अज्ञान तिमरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाश सा प्रभावन। संसार के समस्त प्राणियों के अंदर में अज्ञान का ऐसा अंधकार फैला रहता है कि उसे अपने हित और अहित का विचार, हित और अहित का मार्ग दिखाई नहीं देता। ऐसे हम सब अज्ञानियों के लिए आचार्यों ने जो अपनी अनुकंपा के द्वारा ऐसा कोई हमें उपाय बतलाया है, ऐसी कोई जिनेंद्र भगवान की प्रभावना यदि की जाए, उनकी प्रभावना का उनके महात्मा का प्रकाश यदि फैला जाए तो हो सकता है कि सबके अंदर में फैला होगा अज्ञान का अंधकार दूर हो जाएगा, और जिस क्षण हमारे अज्ञान का अंधकार दूर होगा उस दिन से हमारा वो मोक्ष मार्ग हमें अपने आप दिखाई देने लगेगा कि कल्याण का मार्ग तो हमारा ये है। वो रत्नत्रय, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जिस मार्ग पर चल करके हम फिर उन जिनेंद्र भगवान जैसे बन सकेंगे। ये प्रभावना जितनी बाहर से होती है उससे कहीं ज्यादा भीतर से हुआ करती है। हमारे आचार्य ने जितना जो कुछ भी कथन किया है, जितना जो कुछ भी धर्म का निरूपण किया है, वस्तु तत्व का स्वरूप समझाया, वो सब समझाने के दो ही कथन उनके रहे हैं, तीसरा कोई कथन नहीं था। नयों का जब अवलंबन उन्होंने लिया है तो एक ओर नए का अवलंबन लिया है तो दूसरी ओर प्रमाण का अवलंबन लिया है। प्रमाण में बात कही नहीं जा सकती थी सारी, इसलिए नए के द्वारा कहना पड़ी। नए में भी उन्होंने दो तरह से ही कहा, एक तो निश्चय की तरह से धर्म का प्ररूपण होता है, एक व्यवहार की तरफ से धर्म का प्ररूपण होता है। तो ये हमारा प्रभावना अंग, जहां एक और व्यवहार की दृष्टि से आज हमने इतने उत्साह के साथ ही अपना आचरण ऐसा बनाया प्रभावना में, दूसरी ओर भी हमें देखना चाहेंगे। आचार्य अमृत चंद जी महाराज अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में एक कारिका के माध्यम से उन्होंने दोनों तरह की प्रभावना का वर्णन कर दिया है। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याति सैश्च जिन धर्म। एक ओर हमें बाहर की प्रभावना के लिए सूत्र बताया तो दूसरी ओर हमें अपनी अंदर की प्रभावना की बात भी कही। निश्चय का अवलंबन लेकर के पहली पंक्ति में उन्हें अपनी आत्मा को प्रभावना की बात कहना थी कि वो सम्यक दृष्टि निश्चय से अपनी आत्मा की क्या प्रभावना करता होगा। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्र तेजसा सतत में, वे धन्य है महापुरुष जिन्होंने उस रत्नत्रय के द्वारा अपनी आत्मा को प्रभावित किया है। उस रत्नत्रय का तेज इतना है कि उस तेज के माध्यम से उनकी आत्मा प्रकाशित हो उठती है। वो हमारा निश्चय धर्म है, वो हमारा निश्चय आचरण है प्रभावना अंग का, कि इस दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से हमने अपने आप को प्रभावित किया है। अपने आप को यदि प्रकाशित किया है तो मान करके चलिए हमने सम्यक दर्शन का अंतरंग आचरण आज पालन किया। ये एक दिन के पालन की वस्तु नहीं है, ये तो जिस क्षण से हमारे अंदर में श्रद्धा पैदा हो जाती है उसी क्षण से जब तक वो श्रद्धा हमारे जीवन में अनंत काल तक, तब तक हमारा आचरण अंदर का पैसा ही बना रहता है। वो जिस क्षण हमारी आत्मा पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाती है, निर्मल हो जाती है, फिर हमें कोई बाहरी प्रभावना की कोई आवश्यकता नहीं होती। आज हमने बाहरी प्रभावना की बात कही, अंदर की प्रभावना हर क्षण हर वक्त हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इतनी शक्ति और सामर्थ्य तो उसमें ही हो सकती है जो नमोस्तु कहलाने के अधिकारी होते हैं, वे मुनि महाराज ही हो सकते हैं जो रत्नत्रय को धारण कर लेते हैं। निश्चय और व्यवहार दोनों तरह के रत्नत्रय का पालन करते हैं वो धन्य है मुनि महाराज, वो अपनी आत्मा को प्रभावित करते हैं। आप और हम तो उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले अनुचर हैं। एक दिश रत्नत्रय का पालन करते हैं, टूटे फूटे छोटे मोटे व्रत लेकर के उनका मार्ग का अनुसरण करके बढ़ते चले जाते हैं। मार्ग तो वास्तव में एक ही है मोक्ष जाने का, तो मात्र एक रत्नत्रय को धारण करके जो दिगंबर मुद्रा अंगीकार करता है वहीं से हमारी जीवन की इति, हमारे जीवन की शुरुआत वहीं होती है और वहीं समापन होता है इस जीवन का। और जहां नया जीवन शुरू हो जाता है फिर नया ही नया रहता है, उसमें कोई विशेष बाहरी परिवर्तन दिखाई नहीं देते हैं, अंदर के परिवर्तन चलते रहते हैं। तो हमारा आचरण सम्यक आचरण माना जाता है। बाहरी प्रभावना के लिए आचार्यों ने कहा है दान तप जिन पूजा और विद्या आदि का अक्षय के द्वारा हम जिनेन्द्र भगवान के शासन की प्रभावना कर लेते हैं। हमें अपनी शक्ति के अनुसार चार प्रकार का सत पात्रों के लिए दान देकर के वो भी हमें प्रभावना करनी चाहिए जिनेन्द्र भगवान के शासन की। हमें यथायोग शक्ति अनुसार उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके वो तपस्चरण भी करना चाहिए, तप के द्वारा भी हमें प्रभावना करनी चाहिए और विद्या के द्वारा भी हमें प्रभावना करनी चाहिए। ज्ञान यदि हमें प्राप्त हुआ है तो उस ज्ञान के द्वारा हम जन जन तक उनके भगवान की वो दिव्य वाणी सब तक पहुंचा करके सबके लिए हम परिचित करा दें कि जिनेन्द्र भगवान का धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, कल्याणकारी है, ऐसी प्रभावना भी हमें कर लेनी चाहिए। ये प्रभावना के अवसर हमारे जीवन में बार बार नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। और मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मुझे इस बार गुना में इस तरह की प्रभावना का कोई अवसर आएगा, बल्कि मुझे तो ये लग रहा था लोगों की मुख मुद्राएं देख करके, और अपनी मुख मुद्राओं से वो ये प्रदर्शित कर रहे थे कि महाराज जी तो नाराज होके चले गए, कह नहीं रहे थे लेकिन उनके चेहरा बता रहे थे कि महाराज जी नाराज होके चले गए। हमें आचार्य श्री का वाक्य याद आ गया कि यदि नाराज तो महाराज नहीं और महाराज तो नाराज। और दूसरी ओर हमें वो घटना भी याद आ रही थी कि यदि हम इस तरह से चले भी जाएंगे तो हमारे ऐसे चले जाने से कोई नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? यदि आपने सच्चे मन से हमें स्वीकार किया है, साधुओं को अपने हृदय में स्थान दिया है, तो साधु जा कैसे सकते हैं? सूरदास जी की वो घटना याद आती है मुझे। सूरदास जी ने किन्हीं कारणों से अपने ही हाथों से अपनी आंखें फोड़ ली थीं, और जब आंख फोड़ ली और वो किसी इस तरह के पाप कर्मों के द्वारा ही ऐसा किया था कि मैंने ऐसा पाप किया इसलिए मुझे देखना ही नहीं है, अब क्या करना चाहिए, जब आंख ही नहीं रही तो भगवान का भजन करेगी। तो सूरदास भजन में इतने मस्त हो गए कि उनकी भक्ति से प्रभावित होकर कहते हैं कि श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि सूरदास हम आ गए, जिन्हें तुम बुला रहे हो दर्शन कर लो। तो उन्होंने कहा कि विश्वास नहीं है, यहाँ आ नहीं सकते, तुम भगवान हो ही नहीं, तुम जो कह रहे हो वो हो नहीं, देख लो, देखें कैसे, आंख ही नहीं है। तो उन्होंने कहा है थोड़ी देर के लिए हम तुम्हें एक दृष्टि देते हैं, देख सको तो देख लो। कहते हैं कि उन्होंने अपनी मुरली जो है सूरदास की आंख पर फेर दी, थोड़ी देर के लिए सूरदास की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण खड़े हो गए हैं। तो सूरदास ने चरण छू करके उनका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उनकी आंख फिर बंद हो गई। अब श्री कृष्ण ने कहा कि हम जा रहे हैं। सूरदास ने कहा जा कैसे सकते हो, बामुश्किल से तो हमने तुम्हें पाया है और तुम जाने की बात करते हो, अब नहीं जाने देंगे। लेकिन ऐसा होता है कहीं कि अपन पकड़े रहे हो ना जाएं, लेकिन कृष्ण जी तो कहें हम तो जाएंगे। तो एन केन प्रकारेण जीना झपटी की और ताकत लगा करके कृष्ण ने अपना हाथ छुड़ाया और जाने लगे। तो सूरदास जी ने दो पंक्तियां कहीं, हाथ छुड़ा के जात हो निवल जानकर मोह, हाथ छुड़ा के जात हो निवल जानकर मोह, और हृदय से जब जाओगे सबल जान हो तो। उनने कहा कि हाथ हमें निर्बल जान करके तुम हमारा हाथ छुड़ा करके चले जा रहे हो, चले जाओ कितने बलवान हो, हम तब तुम्हें बलवान समझेंगे जब तुम हमारे हृदय में से चले जाओगे। इस तरह ये साधु संत भी ऐसे चले जाने के बाद में भी कब तक जाएंगे, यदि हमारे हृदय में हैं तो वो कभी जा नहीं सकते। ऐसे संतों का समागम, हम तो कुछ नहीं है, यहाँ कई कई बार साधु आए होंगे और आपने उनकी सेवा की होगी, उनसे धर्म लाभ लिया होगा, हम लोगों से भी जो कुछ बना होगा आपने लिया होगा। लेकिन ऐसी प्रभावना का अर्थ अवसर देख करके मुझे उस सार्थकता लगती है हमारे यहाँ रहने की कि यहाँ रहने के बाद आप लोगों ने एक साथ मिल बैठ करके प्रेम से बैठना सीख लिया है, बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। और ये प्रभावना भगवान जिनेन्द्र देव की प्रभावना है, हमारी क्या प्रभावना हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती, उनकी प्रभावना में सबकी प्रभावना हो जाती है। जब किसी बड़े का नाम लेते हैं तो अपना नाम अपने आप जुड़ जाता है, हमें कौन पहचानता है, कौन महाराज को जानता है, लेकिन आचार्य श्री का नाम लेते ही लोग हमें भी पहचानने लगते हैं कि उनके शिष्य हैं। इसी तरह जो भगवान का नाम लेता है लोग उन्हें भी पहचानने लगते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के भक्त हैं, ये सच्चा भक्त है, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा पुरुष है। यदि हम धर्मात्मा हैं और हम धर्मात्मा यदि धर्म हमारे अंदर में पैदा हो गया है तब हमें अपना आचरण बदल लेना चाहिए, पाप को पाप समझ करके अहितकारी समझ करके छोड़ने की भावना आनी चाहिए, और धर्म को धर्म समझ करके और आगे वृद्धिगत करने की और बढ़ाने की जिज्ञासा और प्रयास हमारा ऐसा होना चाहिए कि वो धर्म ऐसा बढ़ता चला जाए, ऐसा बढ़ता चला जाए कि फिर हमें ये ना कहना पड़े कि महाराज जी दूसरी बार गुनाह आए। ऐसा अवसर आ जाए कि गुनाह में जहां देखो वहां महाराज ही महाराज दिखाई दे। ऐसा अवसर आना चाहिए। कितने लोग यहां से निकलेंगे जो अपने आप साधु बनेंगे? बनाए नहीं जाएंगे, वो बनेंगे। बनाना तो बहुत सरल बात है। ये कोई हलवाई की दुकान नहीं है कि संक्रांति की गड़िया गुल्ला बना करके धर दो। ये साधु यहां से बनाए नहीं जाते हैं, और बनाए जाने वाले साधु तो बहुत थोड़ी देर के लिए होते हैं, मालूम नहीं क्या होता उनका। जो बनते हैं, जो होते हैं, वो साधु होते हैं, और उनकी चर्या से लोगों में भी साधुता प्रकट हो जाती है। तो यहाँ के कितने लोग साधु होंगे वो देखने को भी दिन अपने लिए यहाँ मिलेगा, बड़ी उस दिन भी प्रसन्नता होगी। ऐसी जिनेन्द्र भगवान की प्रभावना करके हम अपने आप को भी, अपनी आत्मा को भी रत्नत्रय के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा समय जीवन में मिलता है, चार क्षण जीवन में आते हैं, उन चार क्षणों में यदि हम कुछ नहीं कर सके तो हमारा जीवन बेकार चला जाता है। एक एक सांस हमारी कितनी बहुमूल्य है, जो बाहर जाती है जरूरी नहीं है कि वो लौट करके फिर से हमारे अंदर में आ जाएगी, कोई इसका भरोसा नहीं है। ये मान करके चलिए कि जो एक सांस हमारी अंदर में गई है वो मेरी है, वही सार्थक हो सकती है। तब तो समझ लेना जिसने मृत्यु को अपने सामने हर क्षण रखा है उसका जीवन धन्य हुए बिना रह नहीं सकता, उसका जीवन पाप से विमुक्त हुए बिना रह नहीं सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर घर हर क्षण हर समय मृत्यु को अपने सामने रखना चाहिए। एक कोई व्यक्ति थे, सांसारिक उलझनों में इतने उलझ गए थे, व्यापार में इतने उलझ गए थे कि उन्हें धर्म करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। और एक दिन वे एक साधु के चरणों में पहुंच गए और निवेदन किया कि महाराज बताओ तो कैसे ये पाप के कारण छूटें और हमें धर्म का लाभ प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, कोई उपाय बता दो। तो महाराज ने कहा कि भैया उपाय उपाय तो छोड़ो, तुम तो जो देखो तुम्हारी आयु मात्र 7 दिन की बची है बस। मैं तो ये कह रहा हूं पाप के छोड़ने का और धर्म पालन का उपाय तो एक तरफ है, मात्र तुम्हारी आयु 7 दिन की बची है, तुम क्या करना चाहते हो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उन्होंने कहा कि 7 दिन की? हाँ भैया 7 दिन की है, 7 दिन के बाद तुम मर जाओगे सुनिश्चित है। वो व्यक्ति घर आ गया लेकिन ना रास्ते में मन लग रहा था, वो ही दिख रहा था कि 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, इन 7 दिनों के बाद हम रह नहीं सकते हैं। घर में आ गया उदास, खाना पीना खाओ मन ही नहीं लगता कि खाना खाएं, दुकान में बैठो मन ही नहीं लगता, कोई भी काम जो अभी तक करते आ रहे थे जिनमें हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह के 5 पाप हो रहे थे उनमें से कोई भी काम करने की उनकी मन नहीं हो रहा था, इतना उदास हो गया और सबसे चुपचाप बैठा होगा भगवान का नाम ले रहा था कि हे भगवान, और बड़ा धार्मिक अनुष्ठान उसने आयोजित कर लिया कि अब मरना ही है तो 7 दिनों में कुछ इस तरह से मरना चाहिए कि बार बार फिर हमें मरना ना पड़े। लेकिन एक एक करके वो 7 दिन निकल गए, सब लोग सोच रहे थे कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, 7 दिन बीत गए लेकिन मृत्यु नहीं हुई। तो वो व्यक्ति 8वें दिन साधु जी के पास पहुंचा कि महाराज आपने कहा था कि 7 दिन में मर जाएंगे और हम तो अभी भी जीवित हैं 8वें दिन। कहने भैया सबके लिए 7 ही दिन में मरने हैं, 8वां कोई दिन है ही नहीं जिसमें मरने का हो, रविवार से गिन लीजिए शनिवार तक इसके बीच तो मरेंगे सब। लेकिन ये बताओ कि 7 दिनों में कैसे लगा तुम्हें, कैसा लग रहा था? तो उसने कहा कि महाराज हमें तो बस मौत दिख रही थी कि अब आई, इसलिए मैंने सोच लिया कि जीवन भर पाप किया है अब बिल्कुल विराम ले लो, और मैं इतना उदासीन हो गया कि मां परमात्मा का नाम लेता रहा और जितना धर्माचरण बना उतना किया मैंने और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भैया यही पाप के छूटने का उपाय है, मौत को अपने सामने रखो, पाप अपने आप छूट जाएगा, धर्म का पालन अपने आप होने लगेगा। थोड़े से क्षणों में हम यदि धर्म को धारण कर लेंगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि सभी जीवों के अंदर ये जिन्हें भगवान का बताया हुआ धर्म प्रतिपल हर क्षण बढ़ता रहे, सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ चार पंक्तियों के द्वारा मैं अपनी बात यहाँ पूरी करता हूँ। गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, जीवन के हर क्षण को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है, पल भर भी विश्वास नहीं। आचार्य गुरु और विद्यासार जी महाराज जी की
अपनी गलतियों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, हमारे मन में जो बातें हैं उनके लिए, पर हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, जो भावनाएं हमारे अंदर उमड़ रही हैं, हम उन भावनाओं को पुनः उनके चरणों में व्यक्त करते हैं। प्रभु हमारी सभी गलतियों को आप क्षमा करें, हम तो अज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं, हमारे क्या हमारी सिर्फ भावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं। और जैसा कि आपने अपनी प्रवचनों में एक बार नहीं कई बार कहा है कि भक्ति की कोई भाषा नहीं होती है, हमारे पास तो कोई भाषा नहीं है, 26 अक्षर जो वर्णमाला के हैं वो हम आपके चरणों में प्रेषित करते हैं। प्रभु उन 26 अक्षरों में जो विनती बनती हो हमारी विनती को आप स्वीकार करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, और आपके चरणों में निवेदन करता हूँ आप हमें आशीषित करें, हमें अमृत पान कराएं।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुदी जो विद्यादि सागर सुदी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की, से चाहे आप सुबह बुलवा लीजिएगा चाहे शाम को बुलवा लीजिएगा, मुझे बात एक ही कहनी है। हमारे अंदर भगवत्ता के प्रति जितनी गहरी श्रद्धा होगी उतनी हमारी भावनाएं पवित्र होंगी, और जितनी हमारी भावनाएं पवित्र होंगी उतना हमारे जीवन में आनंद होगा जो कि अपन देख ही रहे हैं। जितनी निर्मलता आती है उतना अधिक हर्ष, उतना अधिक उल्लास। दो तीन शब्द मैं सोचता हूं कि अपने को जान लेना चाहिए। सुबह भी लोग मेरे से पूछ रहे थे, उत्सव समारोह, उत्सव समारोह आयोजना, इन सब का सेंस क्या है, इनका मीनिंग क्या है, आखिर ये शब्द हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें कौन सा संदेश या कि उपदेश देना चाहते हैं। उत्सव शब्द में अगर देखें तो उत्स भी है और उत भी है, दोनों शब्द हैं। उत हमारे जीवन को ऊंचा उठाने की प्रेरणा देने वाली चीज है, और उत्स जो है वो हमारे स्रोत की सूचना देने वाली थी, जैसे कि हम अपने स्रोत तक पहुंचे। क्या है उत्स, बिगिनिंग क्या है, या कि हमारी अपनी प्योरिटी क्या है, हमारी अपनी ओरिजिनलिटी क्या है, उस उत्स की तरफ। जैसे कि गंगा का उत्स है गंगोत्री, वहां से गंगा निकली हुई, ठीक इसी तरह हमारे जीवन का उत्स क्या है, कहां से हमारा आनंद शुरू हुआ, इस चीज की जो हमें जानकारी देता है या कि हमें ऊंचाइयां देता है वो उत्सव कहलाता है। हमारे सारे उत्सव हमारे जीवन को एक ऊंचाई देने के लिए और हमें अपने जीवन की वास्तविकता को जानने के लिए होते हैं, शायद इसीलिए उनको उत्सव कहते हैं। समारोह बड़ा स्पष्ट है, बहुत समीचीन रूप से जब हम आरोहण करते हैं, आरोहण ऊंचाइयों को छूने का अर्थ है, अवरोह नीचे जाने का अर्थ में, इसलिए समारोह भी बहुत सम्यक प्रकार से अपने आत्मा में ऊंचे उठने के लिए किए जाने वाली कोई प्रक्रिया है समारोह। ये उत्सव और समारोह और आयोजना, युज धातु जो है वो योग के अर्थ में आती है, जुड़ने के अर्थ में आती है। असमंतात पूरी तरह से सब तरफ से जब हम अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसी का नाम तो आयोजन है, आयोजना और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, अपने आत्मा से जुड़ने की सारी प्रक्रिया। आप देखें कि इस तरह की चीजें बहुत कभी कभार जब अपन करते हैं, सुबह भी मैं आपसे बात कर रहा था कि अपने यहां रोज भगवान के ऊपर अभिषेक करते हैं तो वो आनंद नहीं आता, लेकिन कभी कभार कहीं किसी विशेष क्षेत्र पर जाते हैं और वहां भगवान का अभिषेक करते तो बड़ा एक आनंद हमारे जीवन में घटित होता। इसलिए ये सारी चीजें उत्सव समारोह आयोजनाएं समय समय पर हमारे आयोजित हम खुद कर लेते हैं अपने आप, किसके लिए कि कम से कम एक दिन तो हमारे जीवन में अपने उत्स के बारे में, अपने ऊंचाइयों को छूने के वाजना, इन सब का सेंस क्या है, इनका मीनिंग क्या है, आखिर ये शब्द हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें कौन सा संदेश या कि उपदेश देना चाहते हैं। उत्सव शब्द में अगर देखें तो उत्स भी है और उत भी है, दोनों शब्द हैं। उत हमारे जीवन को ऊंचा उठाने की प्रेरणा देने वाली चीज है और उत्स जो है वो हमारे स्रोत की सूचना देने वाली चीज है कि हम अपने स्रोत तक पहुंचे। क्या है उत्स, बिगिनिंग क्या है, या कि हमारी अपनी प्योरिटी क्या है, हमारी अपनी ओरिजिनलिटी क्या है, उस उत्स की तरफ। जैसे कि गंगा का उत्स है गंगोत्री, वहां से गंगा निकली हुई, ठीक इसी तरह हमारे जीवन का उत्स क्या है, कहां से हमारा आनंद शुरू हुआ, इस चीज की जो हमें जानकारी देता है या कि हमें ऊंचाइयां देता है वो उत्सव कहलाता है। हमारे सारे उत्सव हमारे जीवन को एक ऊंचाई देने के लिए और हमें अपने जीवन की वास्तविकता को जानने के लिए होते हैं, शायद इसीलिए उनको उत्सव कहते हैं। समारोह बड़ा स्पष्ट है, बहुत समीचीन रूप से जब हम आरोहण करते हैं, आरोहण ऊंचाइयों को छूने का अर्थ है, अवरोह नीचे जाने का अर्थ में, इसलिए समारोह भी बहुत सम्यक प्रकार से अपने आत्मा में ऊंचे उठने के लिए किए जाने वाली कोई प्रक्रिया है समारोह। ये उत्सव और समारोह और आयोजना, युज धातु जो है वो योग के अर्थ में आती है, जुड़ने के अर्थ में आती है। असमंतात पूरी तरह से सब तरफ से जब हम अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसी का नाम तो आयोजन है, आयोजना और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, अपने आत्मा से जुड़ने की सारी प्रक्रिया। आप देखें कि इस तरह की चीजें बहुत कभी कभार जब अपन करते हैं, सुबह भी मैं आपसे बात कर रहा था कि अपने यहां रोज भगवान के ऊपर अभिषेक करते हैं तो वो आनंद नहीं आता, लेकिन कभी कभार कहीं किसी विशेष क्षेत्र पर जाते हैं और वहां भगवान का अभिषेक करते तो बड़ा एक आनंद हमारे जीवन में घटित होता। इसलिए ये सारी चीजें उत्सव समारोह आयोजनाएं समय समय पर हमारे आयोजित हम खुद कर लेते हैं अपने आप, किसके लिए कि कम से कम एक दिन तो हमारे जीवन में अपने उत्स के बारे में, अपने ऊंचाइयों को छूने के बारे में, या कि अपने को अपने से जोड़ने के लिए कोई प्रक्रिया हमें मिले। तो इसी के लिए ये सारे समारोह और आयोजनाएं हैं, आप हमेशा से करते आए हैं, हमेशा करते रहिएगा, लेकिन हमेशा करते ही रहिएगा आप। मैं तो ये नहीं चाहूंगा कि आप हमेशा उत्सव करते रहिए, कभी अपना उत्सव मनवाइएगा भी, ऐसा क्या सबका उत्सव मनाते रहें और हमारा भी क्यों ना उत्सव मनाया जाए। हमारा उत्सव तो तभी मनाया जा सकता है जबकि हम अपने जीवन का पूरी तरह से उत्स जान लेंगे, जब हम अपने जीवन का पूरी तरह से ऊंचाइयां जीवन की छू लेंगे, तब हमारा जीवन स्वयं उत्सव हो जाएगा। ये सारे उत्सव फिर आवश्यक नहीं होंगे, इन सारे उत्सवों की शायद ऊंचाइयां जो हम पा लेंगे उसी में समाहित हो जाएंगी। विद्या रह मारूड़ो मनो रह पहे सुहन दिजो चेदा सो जिन नान पहावी सम्मा दिखी मुने दम, उसे सम्यक दृष्टि कहा गया है कुंदकुंद आचार्य महाराज ने, कि जो विद्या के रथ पर आरूढ़ होकर के अपने मनोरथ को, हमारे मन की आकांक्षाएं कितनी हैं, कहां कहां क्या क्या नहीं चाहता हमारा मन, उन सब के ऊपर वल्गा हाथ में लेकर के उन सब के ऊपर लगाम देता है, वो वास्तव में धर्म की प्रभावना करता है। पंचेंद्री और मन को जीत लेना किसके माध्यम से, पन्नाए प्रज्ञा के द्वारा, जिस प्रज्ञा के द्वारा पाप में प्रवृत्त होते हैं उसी प्रज्ञा के द्वारा धर्म में भी प्रवृत्त हुआ जा सकता है। इसलिए ये सब चीजें हमारे अंदर उस विद्या को, उस प्रज्ञा को, उस ज्ञान को जागृत करने वाली हैं, जिनके द्वारा कि हम अपने को, मन और इंद्रियों को जीत करके और अपने आत्मा का कल्याण कर सकें। कई तरह के आर्य कहे गए हैं, आर्य खंड में अपन रहते हैं, जम्बू द्वीप का भारत क्षेत्र और उसमें भी छह क्षेत्रों में से मध्य का क्षेत्र आर्य खंड कहलाता है। आर्य खंड में कई तरह के आर्य होते हैं, हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह के आर्य हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अनारी हों, नहीं अनारी तो हो नहीं सकते, क्योंकि आर्य खंड में जन्मा हुआ व्यक्ति अनारी नहीं होता, आर्य ही होता, एक क्षेत्र आर्य होता है। जब हम बहुत अच्छे क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, उसमें लिखा हुआ है काशी कौशल इत्यादि देशों में उत्पन्न होना, ये क्षेत्र आर्य होना कहलाता है। और इसके अलावा दर्शनारी भी होते हैं, जात्यारी भी होते हैं, चारित्रारी भी होते हैं और कर्मारी भी होते हैं। हम देखें कि हम इसमें से कौन से आर्य हैं। हम क्षेत्र आर्य तो हैं, हम जात्यारी, इक्ष्वाकु वंश में पैदा होना, बहुत ऐसी जाति में पैदा होना, जाति ऊंची बड़ी कैसे होती है, जहां रत्नत्रय की परंपरा चलती हो वो ऊंची है और कुछ नहीं। जहां पर रत्नत्रय की परंपरा हो, जहां से लोग रत्नत्रय के प्रति समर्पित होते हो और जहां खुद रत्नत्रय धारण करते हो, वो कुल और वो जाति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो हमें वैसी परंपरा भी मिली हुई है कि हम रत्नत्रय की आराधना करने वाले लोग हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष का मार्ग मानने वाले लोग हैं। तो हम जात्यारी भी हो गए हैं, लेकिन दर्शनारी होना इसके बाद की स्थिति है। सम्यक दर्शन को, सच्ची श्रद्धा को प्राप्त कर लेना, ऐसे दर्शनारी बहुत विरले होते हैं। और चारित्रारी जो कि सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान तो आ ही जाता है लेकिन फिर अपने राग द्वेष को कम करने के लिए जो अपने जीवन में थोड़े बहुत व्रत नियम संयम भी, आचरण का पालन भी करना शुरू कर देते हैं, वो चारित्रारी कहलाते हैं। और कर्मारी, कर्मारी छह प्रकार के कर्मों को जो करते हैं वे कर्मारी हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा विभेद है। मैं कल पढ़ रहा था उसमें सावध्य आर्य, सावध्य कर्मारी अलग हैं, अल्प सावध्य कर्मारी अलग हैं और असावध्य कर्मारी अलग हैं, जो कि पांच पापों को करते हैं, उनने जिनका त्याग नहीं किया है लेकिन जो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसे सावध्य कर्म आर्य भी हैं। छठ आवश्यक करते हैं, सॉरी छह कर्म करते हैं, असीम असी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य, लेकिन सावधानी पूर्वक करते हैं, नीति न्याय पूर्वक करते हैं, धर्म पूर्वक करते हैं, उनको बोलते हैं सावध कर्मारी। लेकिन जो इन असीम असी कृषि में भी बहुत अधिक जिनमें हिंसा होती उनको भी छोड़ देते हैं और देश व्रत ग्रहण कर लेते हैं, वो अल्प सावध कर्मारी कहलाते हैं। और जो महाव्रती हो जाते हैं वे तो सावध को त्याग करने वाले कर्मारी माने जाते हैं। क्या हम इस तरह का कुछ प्रयास कर पाएंगे कि आर्य खंड में पैदा होने अकेले से कोई आर्य हो गया है, जैन कुल में पैदा होने से कोई जैन हो गया है, इस तरह तो बहुत आसान है ये सब होना, लेकिन दर्शनारी, चारित्रारी और निर्वध कर्मारी होना आज भी दुर्लभ है। हम लोग सब इसी तरह की कोशिश करें धर्म के माध्यम से, धीरे धीरे जितना भी हमें बने, कर्म तो हम करते ही हैं, छह आवश्यक कर्म भी श्रावक करता है, छह आवश्यक कर्म साधु करता है। इसके अलावा श्रावक को सावध कर्म भी करना पड़ते हैं। क्यों ना हम ऐसा कोई सावध पाप का कार्य भी करें, तो क्यों ना हम संभल करके करें कि कम से कम में हमारा काम चल जाए। इतना ही तो उपदेश है, चाहे जब पूछिएगा। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद एक बार जब आचार्य श्री से मैंने कहा कि महाराज जी, सारे ग्रंथ आप पढ़ा रहे हैं और ढेर सारे ग्रंथ पढ़े, हमको तो कुल मिलाकर कि एक ही बात समझ में आई कि भैया राग द्वेष न करो और तो सब ठीक। सब कहूं से तुम कोई नहीं चीज उठा के पढ़ लो, जो जो जोन सा ग्रंथ पढ़ना हो, चाहे समय सारजी पढ़ना हो, प्रवचन सारजी पढ़ना हो, पंचास्ती काय जी पढ़ना हो, चाहे गोमटसार कर्मकांड पढ़ना हो, चाहे एक छोटी सी स्तुति पढ़ना हो, मेरी भावना पढ़ना हो, कुल मिलाकर के आखिरी में बात यही आएगी कि बस तू स्वरूप विचार थे पावत मन पावत विश्राम, या वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहार। इतनी ही बात आखिरी में ग्रहण करने की है कि भैया जहां प्रपंच होवे, जहां राग द्वेष की बात होवे, वहां से अपने को चित्त को हटा करके, और जहां वीतरागता की बात होवे, वहां पर हम राग में से भी वीतराग निकाल लेवे, तब तो हमारे अपने धर्म की प्रशंसा होगी। और जहां हम वीतराग में भी जो है राग निकाल लेते हैं, द्वेष निकाल लेते हैं, वहां पर क्या, वहां वो तो हर एक कोई कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये तो संसार का हमेशा से ही चलता आ रहा है। इसलिए कोशिश करिएगा कि सावध कार्य करते हुए भी, मैं ये नहीं करूं कि आप सावध करिएगा पाप कार्य करिए, नहीं, आप कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा सा उसमें से कम करिएगा, और जहां तक बन सके राग द्वेष से दूर रहकर ऐसे वीतरागता की आयोजनाएं, वीतरागता के उत्सव, वीतरागता के समारोह, उसी को पुष्ट करने वाले वीतराग विज्ञान ही सच्चा विज्ञान है, भेद विज्ञान ही सच्चा विज्ञान है, उसको दृष्टि में रख करके और अपने जीवन का पथ निर्मल करने की कोशिश करना चाहिए। रैनागिर में जब ऐसे ही बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, इलक जी कह रहे हैं वो वाली घटना सुनाओ, लोग फुर्सत हैं क्या? अच्छा बैठे, सुना देता हूँ, कोई दिक्कत। सन 87 की बात है, एलक जी की उसी समय दीक्षा हुई थी ज्ञान कल्याणक के दिन, वो पंच कल्याणक का मौका था, है ना, दीक्षा, है ना, दीक्षा हुई थी उसके दूसरे दिन फिर, हाँ, तो पंच कल्याणक वहां सन 87 में जब हुआ, तब गजरत की फेरी होने को थी। अब नैनागिर जैसी छोटी सी जगह में और गजरत की फेरी के दिन 3 लाख आदमी कम से कम, लोगों ने कहा कि इतने लोग हैं। हम लोग खुद भी देख रहे थे कि हमें निकलने के लिए जगह नहीं थी, नीचे ऊपर से नीचे देखते थे तो सिवाय सिर 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 सबके सिर सिर दिखाई पड़ते थे, बीच में कहीं कोई गैप नहीं दिखाई पड़ता था, इतना रश था। मैं आपको जैसा देखा मैंने वैसा कह रहा हूं, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई किस्सा कहानी सुना रहा हूं। इतना रश था और लोग सुबह से बहुत चिंतित थे इस बात के लिए कि क्या होगा, और पानी की जितनी व्यवस्थाएं करी हैं वो सारी की सारी कम पड़ गई। 12 बजे 11 बजे आकर के सामायिक से पहले आचार्य श्री से उन्होंने निवेदन किया कि महाराज जी पानी तो बहुत कम हो जाएगा और इतने लोग आते चले जा रहे हैं और हम कैसे व्यवस्था कर पाएंगे। आचार्य श्री ने कहा कि भगवान का काम है, निश्चिंत रहो, सब अच्छे से हो जाएगा, जाओ आशीर्व, और इतना कह दिया, सब लोग चले गए। मैं कोई चमत्कार उमत्कार नहीं सुना रहा हूं, ना मेरा कोई विश्वास है चमत्कार में, लेकिन मेरा भावनाओं में बहुत विश्वास है, और आचार्य श्री की परंपरा चमत्कार वाली परंपरा नहीं है, आचार्य श्री की परंपरा भावना और श्रद्धा वाली परंपरा है। हमने हर चीज को श्रद्धा और भावना से सॉल्व होते देखा, हर प्रॉब्लम को सॉल्व होते देखा है श्रद्धा और भावना, कोई चमत्कार वाली चीज नहीं। तो उस दिन पानी की बहुत शॉर्टेज और गजरत की फेरी शुरू हो गई 1:30 बजे, और बामुश्किल सवा घंटे में एक फेरी होती थी 11 मिनट में 12 मिनट में, मुश्किल से मैक्सिमम लगे हैं 14 मिनट लगे एक फेरी में, और 7 फेरियां जो है बड़े आसानी के साथ एक सवा घंटे में और पूरी हो गई, और आचार्य आकर के मंच पर बैठी, और मंच पर जैसे ही आकर के बैठे और 2-4 लोगों ने आकर कहा कि चमत्कार हो गया महाराज जी, और हम तो कह नहीं सकते, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद था, और एक तरह से चमत्कार ही हुआ बहुत। बोले भाई हो क्या गया? तो बात कुछ नहीं थी विशेष, इतना ही हुआ था कि पानी की बहुत प्रॉब्लम तो लोगों को लगी रही थी, सारे जितने भी ट्यूबवेल थे, जितने भी रिजर्व ने करके रखा था पानी को, वो सब खलास हो गया था पानी। तब 10-15 लोग जो है युवक पास में जहां फंक्शन चल रहा था उससे थोड़ा सा 50 कदम दूर एक नाला था, उस नाले में एक हैंडपंप लगा हुआ, तो ऐसे ही टहलते टहलते पहुंच गए कि भाई कुछ पानी वानी मिल ही नहीं रहा है, चलो चलते हैं कहीं कुछ मिल जाएगा थोड़ा बहुत। तो वो हैंडपंप उनने चलाना शुरू किया, वो बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ था हैंडपंप, कई दिन से बंद पड़ा हुआ था हैंडपंप, और वो उनने चलाया। वो जैसे ही चलाया तो उसमें से थोड़ा पानी निकला, उन लोगों ने सोचा कि बहुत दिन से नहीं चलाया, थोड़ा रिजर्व हो गया होगा इसलिए निकल रहा है, तो उनने और थोड़ा चलाया, वो निकलते ही चला गया। वो 10-15 लोगों ने तो पी लिया पानी, और लोगों को सूचना दी कि भाई पानी पीना हो तो पानी वहां पर है, और बस हैंडपंप चलता रहा। लोग बताते हैं कि 1:30 बजे से हैंडपंप चला है और 2:30-3 जब तक की सारी फेरियां नहीं हो गई हैं और आचार्य मंच पर आकर बैठे हैं और हैंडपंप में पानी निकलना बंद हो गया, उसके पहले तक पानी निकलता। अब जब आचार्य से यह कहा गया कि आचार्य इस तरह के चमत्कार हो गया, तब आचार्य ने एक ही चीज कही थी कि भैया इतने सारे लोग अच्छी भावना लेकर के और भगवान के चरणों में आए थे, वे प्यासे कैसे जा सकते। मैं भी वही घटना याद करके और आज आपसे फिर कह रहा हूं कि प्यासे तो आप जाएंगे नहीं, पर पूरी तरह तृप्त भी नहीं हो पाएंगे, फिर आना पड़ेगा। कोशिश बार 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 थोड़ी थोड़ी प्यास बुझाइएगा और बार बार पीने की आकांक्षा से फिर इसी तरह की आयोजनाएं करते रहिएगा। अच्छा लगता है जब सब धर्म के लिए जुड़ते हैं, दुनिया पाप के लिए तो हर जगह जुड़ जाती है, लेकिन धर्म के लिए इस तरह जुड़ना आसान नहीं है, आपने आसान बनाया। आपके लिए हमारा आशीर्वाद, आचार्य श्री का भी आपके लिए आशीर्वाद है ही। सब लोग भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विनय अर्पित करके और जीवन में आनंद पाएं, ऐसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय।
सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 गुरुवर क्षमा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, गुनानगर के समस्त ये श्रद्धालुगण, ये बहनें, ये माताएं महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए यहां श्रीफल भेंट कर रहे हैं, जिससे कि हम आचार्य श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए ये निवेदन करें, हे प्रभु हमें ऐसे संतों का जो समागम मिला है, ऐसे संतों का जो समागम प्राप्त हुआ है, उससे हम दर्शनाई बनने का प्रयत्न करें, राग द्वेष से जितने जितने दूर हटते चले जाएं हमारे जीवन में निखार आता चला जाएगा। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है ऐसे श्री गुरु के चरणों की, ऐसे गुरुओं के अवलंबन की, ऐसे गुरुओं के उपदेश की, ऐसे गुरुओं की परम पवित्र वाणी की। मैं निवेदन कर रहा हूं परम पूज्य महाराज श्री से, उनके साथ में दोनों एलेक जी महाराज से, उनके चरणों में पुनः निवेदन करते हुए आप सभी की भावनाओं को यहां हम प्रेषित कर रहे हैं इन श्री फलों से। हे प्रभु हमारे अज्ञानता की ओर ध्यान न देते हुए हमारी भावनाओं को आप ध्यान दें, हमें और ज्ञान अमृत पान कराएं। प्रभु हम आपके चरणों में शीतकालीन वासना के लिए सर्वप्रथम समाज के अध्यक्ष श्री सुरेश सिंह जी
तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाए व समोसरण की दिव्य ध्वनि सुनने का सौभाग्य भव्य जीवों को प्राप्त होता रहा है। काल चक्र के प्रभाव से वर्तमान समय में हिंसा, अराजकता, अन्याय, भ्रष्टाचार जैसा दूषित वातावरण अंधकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु रूप में ऐसे तेज प्रकाश पुंज का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे गुरु दर्शन मात्र से मन का कालुष मिट जाए, ऐसी गुरु वाणी जैसे समोसरण में दिव्य ध्वनि, ऐसे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य श्री क्षमा सागर जी महाराज के चरणों में सत वंदन। आचार्य श्री जी के वचनों की सीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें ब्रह्मचारी श्री अजित वीर श्री दिगंबर जैन पंचपाल कीर्ति मंदिर विद्यासागर नगर बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने एपी रोड इंदौर 10 दूरभाष कोड 0731 दूरभाष संख्या 2571851।
पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, पतझड़ न रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब तो हमें अंत चाहिए। तमघना अज्ञानता का छारना है गल, आज क्षमा सागर जैसा संत चाहिए।